लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको प्रभु ईश्वर का आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि आधुनिक प्रकार की दासता अर्थात मानव तस्करी का उन्मूलन हो। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। श्रोताओं, पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल के प्राचीन व्यवस्थान के स्तोत्र ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं। स्तोत्र ग्रंथ 150 भजनों का संग्रह है। इन भजनों में विभिन्न ऐतिहासिक और धार्मिक विषयों को प्रस्तुत किया गया है। कुछ भजन प्राचीन इसराइलियों के इतिहास का वर्णन करते हैं तो कुछ में ईश कीर्तन, सृष्टिकर्ता ईश्वर के प्रति धन्यवाद ज्ञापन और पापों के लिए क्षमा की याचना के गीत निहित हैं। कुछ भजन ऐसे भी हैं जिनमें प्रभु की कृपा, उनके अनुग्रह और अनुकंपा की याचना की गई है। इन भजनों में मानव की दीनता और दयनीय दशा का स्मरण कर करुणावान ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि वे कठिनाइयों को सहन करने का साहस दें और सभी बाधाओं एवं अड़चनों को जीवन से दूर रखें। मैं ऊंचे स्वर से ईश्वर को पुकारता हूँ, वह मेरी सुनेगा। अपने संकट के दिन में मैं प्रभु को खोजता हूँ, दिन रात बिना थके उसके आगे हाथ पसारता हूँ। मेरी आत्मा सांत्वना अस्वीकार करती है, मैं ईश्वर को याद करते हुए विलाप करता हूँ। मनन करते करते मेरी आत्मा शिथिल हो जाती है। तू मेरी आँख लगने नहीं देता, मैं व्याकुल हूँ और नहीं जानता कि क्या कहूँ। श्रोताओं, ये थे स्तोत्र ग्रंथ के 77वें भजन के प्रथम 5 पद, जिनकी व्याख्या हमने विगत सप्ताह पवित्र धर्मग्रंथ बाइबल एक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत आरंभ की थी। 77वां भजन इसराइल के इतिहास पर विचार करता और हमें प्रार्थना करना सिखाता है। भजन के इन शब्दों में हम संकट में पड़े मानव मन की व्यथा को पाते हैं। मनुष्य का संकट जब गहरा जाता है तब वह ईश्वर को ऊंचे स्वर में पुकारने लगता है। श्रोताओं, ऊंचे स्वर में हम तभी पुकारते या चिल्लाने लगते हैं जब हमें और कोई रास्ता नहीं सूझता। इससे स्पष्ट है कि 77वें भजन के प्रार्थी को कोई भी और रास्ता नहीं सूझा। उसके लिए एकमात्र रास्ता था ईश्वर को पुकारने का और उनमें अपने विश्वास को सुदृढ़ करते हुए ईश्वर के आगे हाथ पसारने का। 77वें भजन के उक्त शब्दों से स्पष्ट पता चलता है कि ईश्वर को पुकारने वाला व्याकुल हो उठा था और अपनी व्याकुलता में उसे यह नहीं मालूम पड़ रहा था कि वह क्या कहे। श्रोताओं, प्रायः ऐसा हमारे साथ भी होता है। संकट की घड़ियों में हम ईश्वर के समक्ष खड़े तो हो जाते हैं किंतु हमें यह नहीं मालूम होता कि हम क्या कहें, अपनी व्यथा के बारे में ईश्वर से क्या बोलें, उनसे क्या मांगें। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्तोत्र ग्रंथ का 77वां भजन एक अकेले और साधारण व्यक्ति की प्रार्थना है। सृष्टिकर्ता में अपने विश्वास के कारण ही आपत्ति आने पर वह ईश्वर को पुकारता है। वह ईश्वर द्वारा आदि मानव से की गई प्रतिज्ञा को याद करता और अपनी रक्षा की आशा करता है। जीवन में यत्र तत्र शांति और सुरक्षा ढूंढने के बाद उसकी समझ में आ जाता है कि ईश्वर का नाम लेकर ही, ईश्वर से प्रार्थना कर ही वह शांति और सुरक्षा में जीवन यापन कर सकता था। श्रोताओ, विगत सप्ताह बाइबल पंडितों का हवाला देकर हमने इस तथ्य की ओर आपका ध्यान आकर्षित कराया था कि 77वें भजन के प्रार्थी ने उस समय ईश्वर को पुकारा होगा जब उसे अन्य इसराइलियों के संग संग वर्ष 587 ईसा पूर्व बाबुल निष्कासित कर दिया गया था। परिणाम स्वरूप उसे खो जाने, अपने घर और परिवार तथा जीवन यापन के साधनों को खो देने और साथ ही स्वयं ईश्वर को भी खो देने का कटु अनुभव प्राप्त हुआ होगा। वह केवल सांत्वना से संतुष्ट नहीं होता है और चाहता है कि प्रभु उसे तुरंत संकट से बाहर निकाले। इसीलिए आगे 77वें भजन के 6वें, 7वें और 8वें पदों में कहता है, मैं अतीत के दिनों पर, बहुत पहले बीते वर्षों पर विचार करता हूँ। रात को मुझे अपना भजन याद आता है। मेरा हृदय इस पर विचार करता है और मेरी आत्मा यह पूछती है, क्या प्रभु सदा के लिए त्यागता है? 77वें भजन का प्रार्थी उन बीते वर्षों की याद करता है जब प्रभु ईश्वर ने इज़राइल का उद्धार किया था और उसे दमनकारी मिस्रियों के हाथों से छुड़ाया था। वह जरूसलेम में व्यतीत अपने अच्छे दिनों की याद करता है और निष्कासित जीवन पर विलाप कर मानो अपनी स्थिति के लिए ईश्वर को ही दोषी ठहराता है। उसे लगता है कि वह अपने शहर और अपने देश से ही निष्कासित नहीं किया जा रहा था, अपितु ईश्वर से भी दूर किया जा रहा था। प्रश्न करता है, क्या प्रभु सदा के लिए त्यागता है? उसे विश्वास नहीं होता कि प्रभु ईश्वर भक्त का कभी परित्याग भी कर सकते हैं। इस बात को स्वीकार करने के लिए वह तैयार नहीं है, क्योंकि जैसा कि 73वें भजन में हमने पढ़ा, प्रभु ईश्वर नबी मूसा के द्वारा अपनी प्रजा से स्वयं कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसके मन में यह प्रश्न बारंबार उठता है कि क्या प्रभु ईश्वर नबी मूसा और उसके लोगों से की गई संधि को भूल गए हैं? क्या उन्होंने अपने असीम प्यार के प्रण को वापस ले लिया है? वह मन ही मन प्रश्न करता है कि क्या ईश्वर ईसाया के ग्रंथ के 49वें अध्याय के 15वें पद में निहित अपने मात्र सुलभ प्रेम को भूल गए थे, जिसमें लिखा है, क्या स्त्री अपना दुधमुहा बच्चा भुला सकती है? क्या वह अपनी गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? यदि वह भुला भी दे तो भी मैं, यानी कि ईश्वर, तुम्हें नहीं भुलाऊंगा। आगे 9 से लेकर 11 तक के पदों में भी इसी प्रकार के सवालों के माध्यम से भजनकार मनुष्यों को प्रभु के अपूर्व कार्यों का स्मरण दिलाता है। कहता है, क्या उसकी सत्य प्रतिज्ञता लुप्त हो गई है? क्या उसकी वाणी युगों तक मौन रहेगी? क्या प्रभु दया करना भूल गया है? क्या उसने क्रुद्ध होकर अपना हृदय द्वार बंद कर दिया है? मैं कहता हूँ, मेरी यंत्रणा का कारण यह है कि सर्वोच्च प्रभु ने अपना दाहिना हाथ खींच लिया। श्रोताओ, 77वें भजन के उक्त पदों के शब्दों में भजनकार इस तथ्य को महसूस करता है कि जो कुछ वह प्रार्थना में कह रहा था वह उसके आत्म विचार नहीं थे, बल्कि प्रभु ईश्वर की प्रेरणा से प्रेरित होकर ही वह प्रार्थना कर पा रहा था। अस्तु, हम भी जब प्रार्थना करते हैं तब यह न सोचें कि जो कुछ हम बोल रहे हैं, जो विचार हमारे मन में उठ रहे हैं, वे हमारी अपनी बुद्धि की उपज है, अपितु यह स्वीकार करें कि प्रभु ईश्वर की प्रेरणा के बगैर हम प्रार्थना करने में असमर्थ हैं, हम प्रार्थना करने में सक्षम नहीं हो सकते। प्रभु ईश्वर के महान कार्यों को दृष्टिगोचर कर लेने के बाद, उनके अनुपम कार्यों के आनंद को महसूस कर लेने के बाद ही प्रार्थना में इस प्रकार के शब्दों का उच्चार हम कर पाते हैं। यह सदैव याद रखें कि यदि हमारे मन में इस प्रकार की प्रार्थना उठती है तो हमारा मन परिवर्तन हुआ है, और मन परिवर्तन के फल स्वरूप ही हम यह जानने का विवेक पा सके कि जिस सृष्टिकर्ता प्रभु ईश्वर ने हमें रचा, वे ही हमारे रक्षक और हमारे उद्धारकर्ता हैं। इसीलिए हम उनसे ही प्रार्थना किया करें तथा संकट के क्षणों में उन्हीं को ऊंचे स्वर से पुकारें।
याकूब के ईश्वर का सुमिरन रक्षा करे।